नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमा नेगी
और मैं जगत चंदौली
स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है
नई दिशा। दोस्तों, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी कभी भी नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए जो भी जानकारी हम हासिल करते हैं उसका सही और पुख्ता होना बेहद जरूरी है।
और जैसा कि दोस्तों इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए हर सप्ताह HIV से जुड़ी अलग अलग जानकारियां लेकर आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन जानकारियों को ध्यान से सुने और पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि अधूरी जानकारियां गलत भ्रांतियों को भी जन्म दे सकती हैं, जो कि बेहद नुकसानदायक है। कैसे,
तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे सेगमेंट जानो अनजाने में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास HIV से संबंधित जानकारियां तो हैं, लेकिन आधी अधूरी। ऐसे में उन्होंने जानकारियों के साथ साथ कुछ भ्रांतियां भी पाली हुई हैं,
जिसमें पहली और सबसे बड़ी भ्रांति है कि पुरुष महिलाओं की वजह से HIV पॉजिटिव होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि महिलाओं को पुरुषों की वजह से HIV पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा होती है।
एक मिनट प्रेमा, ये बताओ कि कहीं तुम ये बात एक महिला होने की वजह से तो नहीं कर रही हो?
नहीं जगत, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं शोध के आधार पर ही कह रही हूँ।
अच्छा अच्छा।
दुनिया भर में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक दर्जा आज भी पुरुषों से कम है, और यही कारण है कि उन्हें जरूरी जानकारी से वंचित रखा जाता है।
तो दोस्तों, प्रेमा की बात पर गौर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक और ऐसी ही भ्रांति है जिसमें लोग HIV और एड्स में कोई फर्क ही नहीं समझते। HIV संक्रमित होने के बाद किसी भी व्यक्ति को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं दोस्तों, और इस अवधि को ART दवाइयों से अब और भी लंबा किया जा रहा है, ताकि HIV पॉजिटिव व्यक्ति संक्रमित होने के बाद भी 20 से 25 साल तक एक स्वस्थ, सामान्य और अच्छी जिंदगी बिता सके।
और अक्सर कुछ HIV पॉजिटिव लोग ये सोचते हैं कि यदि वो और उनका जीवन साथी दोनों HIV पॉजिटिव हैं, तो उन्हें शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है।
और ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों अगर आप या आपका साथी या फिर दोनों में से कोई भी एक HIV पॉजिटिव है, तो संभोग के दौरान कंडोम का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। अगर आप दोनों में से कोई ART दवाई ले रहा है और HIV को नियंत्रण में रखने की आपकी कोशिश जारी है, तो ऐसे में आपकी ये गलती अगर आप बिना कंडोम के संभोग करते हैं तो किए गए उपचार पर पानी फेर सकती है। और हाँ दोस्तों, मैं इतना जरूर कहूंगा कि HIV एड्स को खत्म करने के लिए आज डॉक्टर और वैज्ञानिक दिन रात खोजों में लगे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम इससे पूरी तरह निजात पालेंगे, यानी इसे खत्म कर पाएंगे।
तो दोस्तों, सावधान रहिए, जानकार रहिए और HIV से सुरक्षित रहिए।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, ला 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 ला।
जगत, अब ये जानकारी तो हमने अपने श्रोताओं को दे दी, लेकिन एक और ऐसी बात है जिसे जानने में हमारे श्रोता बेहद दिलचस्पी रखते हैं।
अच्छा, वो कौन सी बात है भाई?
अरे भाई, हमारे विजेता का नाम।
हो हो, तो फिर देर किस बात की है, बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट भेजा फ्राई की तरफ।
दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने आपसे पूछा था, एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर के किस तरल पदार्थ में HIV विषाणु की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रक्त और वीर्य।
और एपिसोड 45 का सही जवाब देकर हमारे आज के भाग्यशाली विजेता बन गए हैं चंदन कुमार बिहार से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, अगर किसी HIV से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में CD4 की संख्या 200 या उससे कम है, तो उसका क्या मतलब है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए। अगर किसी HIV से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में CD4 की संख्या 200 या उससे कम है, तो उसका क्या मतलब है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत स्वस्थ है, बी, अब उन्हें HIV नहीं है, सी, उसे एंटी रेट्रोवायरल इलाज शुरू कर देना चाहिए और डी वो एक सप्ताह के भीतर मर जाएगा। अपने ऑप्शंस फिर से सुनिए। ए उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत स्वस्थ है, बी अब उन्हें एचआईवी नहीं है, सी उसे एंटी रेट्रोवायरल इलाज शुरू कर देना चाहिए और डी वो एक सप्ताह के भीतर मर जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको जवाब मालूम है तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND49 भेजा फ्राई स्पेस और अपने जवाब ए बी सी या डी और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717672223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। तो दोस्तों आमने सामने में जो हमारे आज के मेहमान हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई काउंसलर है, बल्कि आप ही की तरह हमारे एक श्रोता हैं।
जी हाँ दोस्तों, और वो हमारा कार्यक्रम नई दिशा कितना सुनते हैं, कितना इसे पसंद करते हैं और इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सब हम जानेंगे खुद उन्हीं की जबानी।
तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान ईश्वर कुमार मौर्य जी का। ईश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद मैम।
ईश्वर जी सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या करते हैं।
मैं BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ।
अच्छा ईश्वर जी ये बताइए कि आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है।
मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई और नानी है।
अच्छा ईश्वर जी ये बताइए कि नई दिशा प्रोग्राम आप कब से सुन रहे हैं।
प्रेमा जी मैं पिछले 6-7 महीनों से ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
अच्छा ईश्वर जी ऐसी क्या वजह रही कि जिसके कारण आपने प्रोग्राम सुनना शुरू किया।
जगत जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि HIV एड्स का कोई राय नहीं है, जानकारी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है और युवा पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। और जब मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम से HIV इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैंने इसको सुनना स्टार्ट करा।
अच्छा ईश्वर जी हमें ये बताइए कि इस शो को सुनने के दौरान आपको कोई ऐसी बात याद है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें।
हाँ मुझे स्कूल की कहानी बहुत अच्छी लगी और उसमें जो विनोद नाम का कैरेक्टर है उसे HIV की जानकारी नहीं होती और वह शहर जाकर ड्रग्स रहता है जिसके कारण वह HIV का शिकार हो जाता है। इस कारण हम सब युवाओं को पहले से ही HIV की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम सब इस बीमारी से ग्रसित ना हो सकें।
बिल्कुल सही कहा ईश्वर जी। अच्छा ईश्वर जी ये प्रोग्राम सुनकर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया, आपने कुछ अच्छा महसूस किया।
हाँ जगत जी इस प्रोग्राम को सुनने से पहले मेरे को HIV के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी और इसको सुनने के बाद मेरे को HIV से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान ईश्वर जी, जिनसे बात करके हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ये कार्यक्रम सुनते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इस कार्यक्रम को सुनकर जागरूक हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और आपने इतनी अच्छी जानकारी जो हमारे श्रोताओं के साथ बांटी, हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ वो जरूर उठाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, शायद कुछ इस तरह से हैं। प्रेमा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
वाह 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 जगत क्या लाइनें सुनाई है तुमने हमारे श्रोताओं को।
पीली धूप पहन के तुम देखो भाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे फूलों में मत जाना।
दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेगमेंट आपकी बात में। आज हम जो चिट्ठी पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे प्रेमा।
जगत आज हम चिट्ठी नहीं मैसेज पढ़ने वाले हैं और ये मैसेज हमें भेजा है रमेश जी ने चंबा से और ये पूछ रहे हैं कि एक HIV पॉजिटिव माँ एक स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म देती है। रमेश जी एक HIV से संक्रमित माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन ये 100% निर्धारित नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार आजकल जो नेवी रेपिन दवाइयाँ गर्भवती माँ को दी जाती हैं या ART दवाइयों के साथ ये 99% मुमकिन है कि एक HIV संक्रमित माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है।
धिक्ताना, 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 धिक्ताना।
तो दोस्तों, अगर आप हमसे एचआईवी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें चिट्ठी और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
और दोस्तों, अब आपके इंतजार को विराम देते हुए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की 39वीं कड़ी। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, जयपाल के एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से राधा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। राधा की माँ लक्ष्मी प्रिंसिपल से बात करती है। इधर गांव के लोग जयपाल की दुकान से सामान भी खरीदना बंद कर देते हैं।
उधर राजन और शीला अपनी बेटी सुमन को अपने एचआईवी पॉजिटिव होने की बात बताते हैं, जिसे सुनकर सुमन दुखी होती है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके माता पिता ने उसे इतना जिम्मेदार समझा कि वो उसके साथ अपनी परेशानी बांट सके। आइए अब सुनते हैं कि कहानी क्या मोड़ लेती है।
लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी!
अरे धनवंती दीदी, आओ ना, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो?
हाँ हाँ, आती हूँ।
लो दीदी, बैठो। हाँ, अब बताओ, कुछ काम था क्या?
अरे नहीं, घर पर मन नहीं लग रहा था, सोचा थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया दीदी, अब इस मुसीबत के समय में सब लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, ऐसे में आप जैसे कुछ अच्छे लोगों का साथ ही तो बचा है।
अरे लक्ष्मी, मुझे भी मिली थी कुछ औरतें, रोक रही थी यहाँ आने से।
तो आपने क्या कहा दीदी?
अरे कहना क्या था, बोल दिया उनको, तुमको नहीं रखना लक्ष्मी से वास्ता तो मत रखो, मैं तो उसके घर जाऊंगी भी, उसके घर की चाय भी पीऊंगी।
अच्छा, मैं दीदी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
हाँ।
अरे धनवंती बेटी।
माँ जी, कैसी हैं आप?
मैं तो ठीक हूँ बेटी, बस दुख तो जयपाल का ही है।
माँ जी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने रबीता के पापा को फोन किया था, शायद वो भी जल्दी ही आ जाएंगे।
अच्छा,
लो दीदी चाय ले लो।
हाँ लाओ। अरे लक्ष्मी, जयपाल भाईजी की दुकान कैसी चल रही है?
क्या बताऊं दीदी, जब से गांव वालों को उनके एचआईवी पॉजिटिव होने की बात पता चली है, कोई दुकान पर सामान लेने आता ही नहीं।
क्या
दीदी, और तो और राधा को भी स्कूल से निकाल दिया।
तो तूने मास्टर जी से कुछ नहीं कहा?
बहुत कुछ कहा दीदी, बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने, अब अकेली करती भी तो क्या।
हाँ लक्ष्मी, तुम अकेली हो ना?
हाँ दीदी।
एक काम करते हैं लक्ष्मी, गांव के मर्दों को ना सही, लेकिन औरतों को तो समझा ही सकते हैं, और इसमें मैं अपनी महिला मंडल की औरतों को भी शामिल कर लूंगी, और सब मिलकर जब औरतों को समझाएंगे ना, तो शायद बात उनकी समझ में आ जाए।
लेकिन दीदी, क्या ऐसा हो पाएगा?
कोशिश करके तो देखते हैं लक्ष्मी, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए।
अरे क्यों नहीं हो पाएगा बुआरी, अब धनवंती कह रही है तो कोशिश करने में क्या बुराई है।
हाँ लक्ष्मी, एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए।
भगवान करे ऐसा ही हो।
नमस्ते राजन सर।
अरे मोहित, नमस्ते बेटा, आओ।
सर ये मेरी माँ है।
नमस्ते मास्टर जी।
नमस्कार, आइए बैठिए।
जी।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार आपके बेटे ने कक्षा में सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए हैं।
सच मास्टर जी?
और इतना ही नहीं, मोहित ने अपनी स्कॉलरशिप फिर से हासिल कर ली है, उसे स्कूल की तरफ से फिर से पढ़ाई करने के लिए वजीफा मिला करेगा।
ये सब तो आप ही का आशीर्वाद है मास्टर जी, और माता रानी की कृपा है।
अरे ऐसा मत सोचिए, आपका बेटा मोहित मेहनती है, वो खूब पढ़ाई करेगा।
जी मास्टर जी।
और एक बात और, जो कि स्कूल में आए सभी बच्चों के माता पिता को बताई जा रही है कि हमारे इस विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ जाति पाति, अमीरी गरीबी, यहाँ तक कि अगर बच्चा या बच्चे के परिवार में से कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
मास्टर जी, आप तो जो भी फैसला लेंगे वो बच्चों के हित में ही होगा। हमें किसी बात से कोई एतराज नहीं।
हमें आपसे यही उम्मीद थी।
अच्छा मास्टर जी, अब हम चलते हैं।
जी ठीक है, नमस्कार।
माँ, माँ कहाँ हो?
बेटा संभल के।
माँ।
अरे सुमन, क्या हुआ बेटा? बड़ी खुश लग रही है।
हाँ माँ, ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आई हूँ।
अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है बेटा।
और ये सुमन, इस सब का श्रेय तुम्हें देती है शीला?
मुझे?
लेकिन
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारी मेहनत तो सुमन की है।
नहीं माँ, मुझे जिम्मेदार और समझदार बनाने में तो आप ही का हाथ है।
सुमन
शीला? क्या हुआ शीला? शीला, शीला, बेटा सुमन, हमें अभी शीला को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम जरा अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं जाने का बंदोबस्त करता हूँ।
हाँ पिताजी, अब जल्दी जाइए। मैं माँ का ख्याल रखूंगी।
सुमन,
रबिता, जरा देख तो बेटा कौन है बाहर।
हाँ माँ, अभी देखती हूँ। पिताजी।
रबिता, कैसी हो बेटा?
मैं ठीक हूँ पिताजी, पर आप अचानक, कोई खबर भी नहीं।
अगर बता कर आता तो तेरे चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी देख पाता जो आप दिखाई दे रही है।
हाँ पिताजी, आइए आइए, मैं माँ को बताती हूँ।
अच्छा अच्छा, जा बता।
नहीं 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 विनोद, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है।
नहीं रबीता, मैं तुम्हें बताना चाहता था।
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी विनोद। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम HIV पॉजिटिव हो?
मैं बताना चाहता था रबीता।
हाँ लेकिन बताया तो नहीं ना, क्योंकि तुम स्वार्थी हो गए थे।
नहीं रबीता,
तुम्हें पता चल गया था विनोद कि ये सच जानने के बाद मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी।
रबीता, तुम
तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दिया है विनोद।
नहीं रबीता,
लेकिन याद रखना विनोद, मैं तुम्हारे साथ ये जिंदगी नहीं बिता सकती।
क्या?
और अब तो मेरे पास कोई और चारा भी नहीं बचा है। बेहतर होगा कि अब मैं खुद ही जिंदगी को खत्म कर दूं।
रबीता, रबीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? नहीं रबीता, नहीं 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 रबीता। ओह ओह, भगवान भगवान, सपना था, पर अगर ये सब कुछ सच हो गया तो नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं रबीता को सच नहीं बता सकता और उसे धोखा भी नहीं दे सकता, लेकिन रबीता के बिना ये जिंदगी नहीं, रबीता के बिना जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं।
जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। जाने नहीं देंगे तुझे।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह। और जैसा कि आप सभी को पता है कि HIV पॉजिटिव होने की वजह से जयपाल को समाज में तिरस्कार और अपमान मिल रहा है।
जी हाँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि जयपाल फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगे बाकी लोगों की तरह?
आपको पता है, जब क्या किया जाए में यही सवाल हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने हमारे श्रोताओं से पूछा, तो उन्होंने क्या क्या उपाय बताए?
तो चलिए आपको सुनाते हैं हमारे श्रोताओं के जवाब।
जयपाल के साथ प्रधान जी जो भेदभाव कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गांव के समझदार लोगों को प्रधान जी को समझाना चाहिए, और अगर वह नहीं समझते तो उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
पहले गांव वालों को मिलके प्रधान को समझाना चाहिए, अगर प्रधान गांव वालों का कहना नहीं मानता है तो प्रधान को बाहर कर देना चाहिए गांव से। अगर प्रधान उससे भेदभाव करता रहेगा तो वो जयपाल आत्महत्या कर सकता है।
अगर प्रधान जी जयपाल के साथ भेदभाव करते हैं तो वह उनकी अशिक्षा के कारण है। गांव वालों को भी उन्हें समझाना चाहिए, गांव में अगर कोई अच्छी सस्ता हो या सस्ता वाले आए तो उन्हें प्रधान जी को मिलकर समझाना चाहिए, या फिर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी प्रधान जी को समझाया जा सकता है। अगर प्रधान जी तभी भी ना माने तो प्रधान जी को उनके पद से हटा देना चाहिए और कोई ऐसे शिक्षित और जागरूक जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा आगे हो उन प्रधान का ही चुनाव करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के विचार, जिन्हें जानने की कोशिश कर रहे थे हमारे सामूहिक संवाददाता, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और अब प्रोग्राम आ पहुँचा है अपने आखिरी पड़ाव पर, तो हमें आपसे विदा लेनी होगी। लेकिन जाने से पहले हम हेवलवाणी और मंदाकिनी की आवाज को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे इस प्रोग्राम को उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों हमें सवाल का जवाब SMS करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो नंबर एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223। और दोस्तों अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।